ओम शांति। शारीरिक नाम रमेश है और व्यवसाय से इनकम टैक्स आदि की वकालत का कार्य करता हूं। बॉम्बे में रहता हूं और वास्तव में मुझे टॉपिक दे रहे थे सरेंडर बुद्धि, तो मैंने कहा कि सरेंडर बुद्धि होकर के मुझे जो टॉपिक मिलता है वो ले लेना चाहिए, तब तो सरेंडर बुद्धि कहा जाएगा। क्योंकि मैं जब ज्ञान में शुरू में नहीं था, परंतु हमारे घर पर जब हमारी लौकिक माताजी सब बहन भाइयों को लेके आती थी, तब इन अनुभवों की बातों को ही लेन देन कर बहुत ही कुछ अनुभव मिलता था। तो इसलिए हमने समझा कि इस प्रकार की अनुभव के आधार पर, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे बहन भाई कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जितना हो सके पुरुषार्थ इतना हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा कहीं मानते हैं। हमने ब्रह्मा आज भी जैसे बाबा ने कहा था ना कि बच्चे हमेशा ही ये ध्यान रखो कि अगर आज ही आपका शरीर छूट जाए तो अब तक के या तो आज तक के पुरुषार्थ के आधार पर क्या पद हो सकता है। आज भी मुरली में था तो सतत इस बात का चिंतन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सब व्यापारी भी है बिजनेसमैन भी है। तो बाबा ने कहा था कि बिजनेसमैन जो है सदा ही अपने प्रॉफिट या नुकसान जो भी है, फायदा घाटा आदि जो भी है, उसका ध्यान रखता है। तो उसी हिसाब से हम अपने आप के बारे में सदा ही सतत चिंतित रहे तो क्या होगा, उसके आधार पर हमारे पुरुषार्थ की जो तीव्रता जो है, स्पीड जो है, रफ्तार जो है, वो बढ़ सकती है। और हमने देखा हुआ है कई जगह पर मैं जाता हूँ ईश्वरीय सेवा, तो कई जगह पर जाता हूँ तो और जैसे बच्चा होता है और कोई धक्का दे और गिर जाए तो बच्चा रोता है, और अपने आप ही गिर जाता है तो हंसता है जैसे कि उसने बहुत कुछ बड़ी कमाल कर दिया है। इस प्रकार से हम लोग अपने पुरुषार्थ के बारे में भी 95% बहन भाई जब कहते हैं हम ज्ञान में, क्योंकि आप सबके बारे में भी यही बात आई हुई है कि जो 8 साल से ज्यादा समय से ज्ञान में चलते हो वही यहाँ आ सकते हैं। मेरे को तो आना ही नहीं था, अगर मेरे को अगर ये बात आती तो मैं तो ना लिखता कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि 8 साल से ज्यादा ज्ञान में हो गए और फिर भी अगर हम चलते ही रहे तो फिर आने का फायदा क्या। हमारी स्पीड जो है उसके अंदर बाबा ने पहले से ही बोर्ड लगा दिया है कि जो सिर्फ 3 स्पीड है, चलने की, दौड़ने की और उड़ने की। तो चलने वालों के लिए बाबा ने कह दिया है कि वो समय पर या समय से पहले मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस प्रकार का बोर्ड बाबा ने 1.5-2 साल पहले अव्यक्त मुरली में लगा दिया है। तो इसलिए जो चलने वाले हैं और उस चलने वाले की डेफिनेशन को स्वीकार कर करके हम अगर यहाँ आए तो फिर क्या मतलब। इसलिए वास्तव में तो ये वो होना चाहिए 8 साल से ज्यादा जो ज्ञान में दौड़ने वाले या तो उड़ने वाले। आपने अपने आप को भी स्वीकार कर लिया, और जब हम जाते हैं जहाँ परिचय भी कराया जाता है उसमें भी यही बात कही जाती है कि 3 साल से ज्यादा चलने वाले कौन है, 5 साल से ज्यादा चलने वाले कौन है, 8 साल से ज्यादा चलने वाले कौन है। तो सतत इस बात का चिंतन तो होना ही चाहिए ना, अपनी स्पीड से, अपने पुरुषार्थ से हम संतुष्ट है। आप सब है संतुष्ट? आप सब ये खातरी से, दिल से, फोर्सफुली कह सकते हो कि अब तक के हमारे, जैसे आज बाबा ने चैलेंज दिए इस प्रकार से कि अब तक के वर्तमान के पुरुषार्थ, अब तक के जो भी है उसके आधार पर हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। आज भी दादी ने यही कहा कि 16108 में आने वाले ये हो सकते हैं, इतना ही कहा, और आप लोगों ने नोट भी किया होगा। और 16108 से 108 और 108 से भी 8 की उस प्रकार की जो तीव्रता जो है पुरुषार्थ के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं हमारा विश्वविद्यालय जो है उसका एक डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैवी बंधारण जो है, राज्य बंधारण जैसे भारत सरकार का होता है इस प्रकार से यहाँ पर भी है। और उसी के अंतर्गत हमारे जो भी बहन भाई है उसको 2 क्लासेस के अंदर विभाजित किया गया है, एक है डेडिकेटेड और दूसरे हैं ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार और ट्रस्टी ब्रह्मा कुमारी। तो आप सब, हम सब जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो किस कैटेगरी में है? ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के रूप में, ये तो बात मानते हैं ना। परंतु उसके आगे की जो बात जो है कि साथ साथ समर्पित भी होना चाहिए, समर्पित डेडिकेटेड इस प्रकार से जो होना चाहिए, कईयों के दिल में होता होगा ना कि हम ट्रस्टी तो ब्रह्मा कुमार बन गए, आज दादी जी आप सबको ऑफर करें कि आप में से कौन डेडिकेटेड होने के लिए तैयार है, समर्पित होने के लिए तैयार है। जैसे कन्याओं का समर्पण समारंभ होता है ना, इस प्रकार से युगलों का व्यक्तिगत या तो युगल स्वरूप में समर्पित होने का समारंभ किया जाए तो कितने तैयार होंगे यहाँ देखे तो सही, कितने माताओं में से बहुत कम है, मालूम नहीं क्यों, मैंने समझा माताएं ज्यादा होंगी, मतलब माताएं कम है। परंतु मैं बताऊं, मैं तो थोड़ा वकील हूं ना साथ साथ, तो मैं आपको बताऊं कि ये सब हाथ तो खड़ा किया, परंतु हमारे स्कूल में एक ऐसा था, हमारे टीचर ने ऐसा सिखाया था, इंस्पेक्शन आता था ना तो टीचर ने बोल दिया था कि सबको हाथ खड़ा करने का, जिसको आता हो राइट हैंड खड़ा करे और नहीं आता हो तो लेफ्ट हैंड खड़ा करे। और टीचर को मालूम था परंतु इंस्पेक्टर को मालूम नहीं था, इंस्पेक्टर को लगता था कि सारा ही क्लास को सब कुछ आता है, सब हाथ खड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से आपने हाथ तो खड़ा किया, परंतु हमें मालूम है कि जब जब यहाँ से लिखा जाता है कि सेवाधारी के रूप में एक मास के लिए आने के लिए सभी सेंटरों को वहाँ के बहन या बहनों को या भाइयों को निमंत्रण जाता है, एक मास के लिए सेवाधारी के रूप में समर्पित जीवन यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण जाता है, आप बताइए आप लोगों में से कितने उस टाइम पर भरते हो। आजीवन करने के लिए तैयार है परंतु तो एक मास के लिए तैयार नहीं हो, फिर आजीवन कैसे माना जाए, वो तो वहां टीचर ही नहीं समझती होगी ना कि जाने के लिए क्यों कैसा न हो वहां का, मालूम नहीं किस बात के कारण नहीं भेजती होंगी। परंतु ये भी एक बात है ना, एक प्रश्न है ना, क्योंकि कई बार है एक भाई को कई बार हमने पूछा तो कईयों ने कहा हमको नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती है, हमने कहा आपकी कितनी लीव जो है ना छुट्टियां जो है जमा है, वो भाई ने कहा कि मेरी तो 6 मास जमा है। तो मैंने कहा 6 मास जमा है फिर क्या प्रश्न है एक मास के लिए, कहा नहीं रमेश भाई आपको मालूम नहीं है कई बार बीमारियां आ जाएंगी, ऐसे अनेक परिस्थितियां आ जाएंगी, उस टाइम पर क्या करेंगे, उस टाइम पर बिना तनख्वाह पगार लेना बिना तनख्वाह छुट्टी लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने वो आईवेल के लिए रख दिया है। तो मैंने कहा कि ये आईवेल की बात जो है आपको मालूम होगा इस वर्ष जो भट्टिया अपनी बाबा की जो अव्यक्त मुरलियां चली है तो बाबा पार्टियों से भी मिल रहे थे, तो दिल्ली जोन के बहन भाइयों से जब बाबा मिल रहे थे तब ये आईवेल की बात बाबा ने निकाली। कई लोग जो है बाबा के वो विश्वास नहीं रखते, अपने आईवेल के लिए कुछ न कुछ रख देते हैं, तो फिर बाबा भी समझते हैं कि उसका मेरे ऊपर तो भरोसा आ रही है, अपने वो रखी हुई चीज के ऊपर भरोसा है, तो बाबा कहते हैं मैं क्यों उसको मदद करूं, उसने अपने भविष्य के लिए अपनी समस्याओं के लिए अपने सहारा के लिए मदद के लिए और कुछ रख दिया है, तो बाबा मदद कैसे करें। और फिर बाबा ने दूसरी बात भी बहुत सुंदर एक स्पिरिचुअल लॉ आध्यात्मिक कानून बताया कि आपने मुसीबत के समय के लिए रख दिया ना तो वह चीज मुसीबत को आकर्षित करती रहेंगी, जिस चीज के लिए रखा हुआ होगा उस चीज के लिए ही वो काम में आएगा और उसके लिए वह चीज उसको आकर्षित करते रहेंगे, इसलिए न चाहते हुए एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुसीबतें आती रहेंगी। परंतु जब उस बात मुसीबतों के लिए इस प्रकार की बात के लिए रखा ही नहीं होगा तो जैसे गुजराती में हिंदी में कहते हैं ना न बजेंगे न रहेगा बांस न बजेंगी बांसुरी, ऐसी कुछ बातें जो कही हुई है इस प्रकार से हो सकता है। तो इसलिए क्या है देखा ऐसे गया है कि एक भाई ने दूसरे ने हमको कहा रमेश भाई हम आने के लिए तैयार है परंतु मालूम नहीं वहां कौन सी ड्यूटी मिल जाए। इस प्रकार से मैंने उस भाई को कहा कि मालूम नहीं कौन सी ड्यूटी मिलेंगी उसी के आधार पर मैं वहां जाऊं, तो मैं जैसी चाहूं ऐसी मुझे ड्यूटी मिले तो मैं आऊं, इसको क्या सरेंडर कहेंगे, ये तो कंडीशन हो गया ना, सरेंडर त्याग माना त्याग, हमारी इन दादियों ने हमारे इन पुराने बहन भाइयों ने जो समर्पित किया उस टाइम पर ये कंडीशन रखवाई थी कि बाबा आप हमसे ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ऐसी कोई बात की कंडीशन नहीं थी। तो उस प्रकार से ट्रस्टी जीवन के अंदर जब हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रश्न ये है कि हम आइडियल ट्रस्टी के रूप में हैं, ट्रस्टी के जो सिद्धांत जो है ग्रस्त व्यवहार के जो बाबा ने जो सिद्धांत कहे हुए हैं उस सिद्धांत के मुताबिक हमारा जीवन व्यवहार चलता है। अपने आप से पूछिए, एक बार बाबा ने कहा था हमको, ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले जो होते हैं ना, सब हर कदम कदम पर हर बात पर बाबा से श्रीमत नहीं लेते हैं। मैंने कहा कैसे, तो बाबा ने बहुत सुंदर मुझे फौरन पकड़ा, मुझे कहा, मेरे हाथ में घड़ी थी, तो बाबा ने कहा बच्चे बताओ ये घड़ी तुमने खरीद किया है? मैंने कहा हाँ बाबा मैंने खरीद किया है। तो बाबा ने कहा कितने में लिया? तो मैंने कहा बाबा ये जरा ऑटोमेटिक आदि है तो जरा 500 रुपये की है। तो बाबा ने कहा कि बाबा की श्रीमत पर लिया है? मैंने कहा बाबा ये आप इतने बड़े बाबा हो, इतनी छोटी छोटी बात पर आपसे कैसे पूछे। तो बाबा ने कहा मैंने तो कहा है कि बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर लो, मुझे मैंने ये तो नहीं कहा कि बड़ी बड़ी बातों पर मुझे पूछो, छोटी बात पर अपने मत पर चलो। बाबा ने कहा देखो बच्चे घड़ी तो समय दिखाने का काम करती है, 100 रुपये वाली भी घड़ी ले सकते हो। मैंने कहा बाबा 100 रुपये वाली घड़ी इतनी अच्छी नहीं होती है। बाबा ने कहा किसने कहा? तो बाबा ने हमको 100 रुपये वाली भी घड़ी दे करके दी, तो 500 रुपये वाली पहले भी घड़ गई और 100 रुपये वाली ज्यादा चली। तो बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात कही कि जो गृहस्थ व्यवहार में हम रहते हैं ना, बाबा ने कहा अभी तक तुम बच्चों का फैशन आदि के ऊपर विश्वास नहीं गया हुआ है, अभी भी फैशन आदि फालतू बातों में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी समय और धन आदि जो है, जिस प्रकार की यज्ञ की मर्यादाएं जो है, उस प्रकार की यज्ञ की मर्यादाओं के आधार पर अपने गृहस्थ व्यवहार में अपना जीवन व्यतीत करते हो। उस समय से मैंने ध्यान में रखना शुरू कर दिया कि भाई जितनी भी यज्ञ की मर्यादाएं जो भी है, जिस प्रकार के यज्ञ के समर्पित बहन भाई अपने जीवन के अंदर व्यतीत करते हैं समय दिनचर्या, इसी प्रकार की मेरी भी दिनचर्या होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं आइडियल ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के रूप में कहलाने के लिए लायक नहीं हूं। अपने आप देख लीजिए, अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, खर्च आदि जो भी बातें जो होती है, समय की भी बातें जो होती है, संबंधों आदि के बीच की भी बातें जो होती है, इन सब बातों के ऊपर देख लीजिए कि हम जितने होने चाहिए इतने ऑनेस्ट आइडियल ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार है या आदर्श हमारा गृहस्थ व्यवहार है। जो नहीं है तो किन किन बातों के ऊपर आप यहाँ आए हुए हैं ना, तो इस प्रकार से जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, सिंहावलोकन अपने जीवन का, अपने व्यवहार का, अपने कार्य का, अपने लक्ष्य का, अपने पुरुषार्थ का, इन सब बातों का करके देखिए और उसके आधार पर देख लीजिए कि हम अपने जीवन व्यवहार को इस प्रकार से आइडियल ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार या तो ब्रह्मा कुमारी के रूप में व्यतीत कर रहे हैं, या उसमें कई जगह पर ट्रस्टी कहलाते तो हो परंतु क्या होता है, जिस प्रकार से जितना बाबा चाहते हैं उस प्रकार के, या जो बाबा ने ट्रस्टी के रूप में जो जो बातें कही हुई है उस प्रकार की बातों के आधार पर इतने तक का अगर जीवन व्यवहार नहीं होगा तो क्या होगा। ये समय बहुत कीमती है, बाबा ने भी कहा है, हम सब जानते हैं, और कल्प कल्प की ये बाजी है, एक तो पहले से ही देरी से आए हुए हैं और देरी से आने के बाद पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाएंगे तो क्या होगा। जितना ऊंच लक्ष्य रखा हुआ है उतना अगर ऊंच पुरुषार्थ नहीं होगा तो इतनी ऊंची प्राप्ति नहीं होगी, और इसलिए क्या होगा, कल्प कल्प, ये कल्प कल्प की ये बाजी है ना, इसलिए ये बाजी हमेश के लिए ना रह जाए, और हमेश के लिए इस प्रकार का पीछे से आए हैं तो पीछे का ही पद ऐसा न रह जाए, इस प्रकार की सावधानी के रूप में यहाँ पर आकर के इस भट्टी के अंदर, क्योंकि आप सब सैंपल के रूप में हो ना, आपको देख रहे हैं सारा ही दैवी परिवार, क्योंकि सारे ही दैवी परिवार के अंदर गृहस्थ व्यवहार में रह करके जीवन व्यतीत करने वाले बहुत है, उनमें से आप गिने चुने आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ना, इसलिए आप सब अपने आप को, मैं हमेशा ये मानता हूँ और आप सब भी मानते होंगे कि हम सब बाबा के चेतन म्यूजियम है, चैतन्य एग्जाम्पल से दुनिया के सामने सबूत के रूप में, जैसे बाबा ने भी कहा हुआ है कि आप बच्चे महिमा बहुत भी की भाई, आप लोगों ने चैलेंज दिया हुआ है कि आग और कपूर इकट्ठा नहीं रह सकते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प नहीं रह सकते, ऐसी ऐसी बातों की चैलेंज तो दी है, परंतु उस प्रकार का जो व्यवहार होना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हम हैं बाबा के सैंपल, और हम बाबा के सैंपल बच्चे अगर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, छोटी सी भी गलती हो जाएंगे तो क्या होगा? मैं दादी जी के साथ 77 में मॉरिशियस गया हुआ था वर्ल्ड टूर में, उसमें मॉरिशियस आया था, तो मॉरिशियस का उस टाइम का दैवी परिवार बहुत छोटा था, और दादी जी ने मॉरिशियस के बहन भाइयों को एक सावधानी दी कि आप भले हो थोड़ा ही परिवार, पर ध्यान में रखिए कि आपका बहुत बड़ा भारी काउंटर पार्ट परिवार के रूप में हिंदुस्तान में है, और आपकी छोटी सी भी गलती जो होगी ना, आपकी अच्छी बातें भारत में नहीं आएंगी, परंतु आपकी कोई भी छोटी सी गलती, छोटी सी बात भी होगी ना, वो भारत में आएंगी और भारत के ईश्वरीय सेवा के ऊपर उसका बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, विघ्न रूप प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम है, हमारा जीवन जो है सैंपल के रूप में जब है, तो इतनी छोटी बात, लोग इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लोगों को मार्क करते हैं, निगाह रखते हैं और सोचते हैं, बोलते हैं, और उसके आधार पर हमें अपने आप के ऊपर ये चेकिंग होना ही चाहिए कि जितना हमारा पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं इतना पुरुषार्थ है, इतने आइडियल ट्रस्टी के रूप में ऑनेस्ट पवित्र तो बनते हैं, परंतु पवित्र के साथ साथ दूसरी बात जो है ऑनेस्ट बनना चाहिए। इस प्रकार की ऑनेस्ट ट्रस्टीशिप हमारे जीवन में है, उसी प्रकार से दूसरा है सरेंडर्ड ट्रस्टी जो होता है, साथ साथ सरेंडर्ड भी इतना ही होता है, बाबा के ऊपर पूरा ही निश्चय, पूरा ही एक बल, एक भरोसा, इस प्रकार का होना चाहिए। परंतु क्या होता है, हमारा निश्चय जो है, हम सब पांडव जो है ना, पांडवों में एक बहुत बड़ा, उसका बड़ा भाई था, पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था? नहीं जी, कर्ण था, कर्ण था, याद होगा, वो पांडवों में ही था, पांडव पुत्र था, मतलब कुंती पुत्र ही था, परंतु कौरवों में चला गया था। कुंती पुत्र पांडव जो था ना, कर्ण जो था, उसको एक श्राप था कि समय पर वो ज्ञान भूल जाता था। उसको कहा गया, तेरा अंतिम समय जब आएगा ना, तब क्या होगा, तू ये ज्ञान भूल जाएगा। याद आता है, महाभारत पढ़ा होगा ना अज्ञान काल में, ज्ञान में तो आने के बाद शायद नहीं भी पढ़ा हो, अज्ञान काल में पढ़ा होगा, उसमें ये। तो हम सब पांडव जो है ना, हम औरों को ज्ञान देने के टाइम पर बहुत फर्स्ट क्लास बोलेंगे, परंतु समय पर हमारी जब परीक्षा आएंगी ना, उस परीक्षा के समय पर क्या होगा, 95% बहन भाई जो है ना यही कहते, जब उनकी कोई गलती होती है ना, क्या करे, उसी टाइम पर भूल गए या ऐसा हो गया। और दूसरी एक बात जो है ना, बहानाबाजी। मेरी बाबा से हमेशा ही ये इस बात पर डिबेट होती थी ब्रह्मा बाबा के साथ। बाबा कहते थे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, मैं कहता था बाबा नंबर वार नहीं, ये शब्द हमको नहीं चाहिए, हमारी डिक्शनरी में ये नहीं होना चाहिए। तो फिर अभी तो बाबा ने जब बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई ना, तब मेरे सामने देख करके उसने कहा कि ये बहानेबाजी में कोई नंबर वार नहीं है, सबका पहला नंबर है। तो बात चल रही थी, साइकोलॉजी में भी ये कहा गया है कि हर एक जो है ना अपनी कमजोरी के वकील है, और कमजोरी को जीत इसलिए नहीं सकते क्योंकि अपनी कमजोरी की वकालत करते हैं, इसलिए क्या होता है, कमजोरी के ऊपर जीतने का पुरुषार्थ नहीं होता है। तो इसलिए आप यहाँ आए हो ना, तो इस बात को यहाँ पर अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन व्यवहार को देखिए कि हमारे जीवन के अंदर कौन से ऐसी ऐसी कमजोरी है। इसको ये नहीं कहिए, ये तो हमारा संस्कार है, ये तो हमारी आदत है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। इस प्रकार से अपनी कमजोरियों के वकील बन करके उसको, उसका पालना करने का जो संस्कार जो है ना, वो कृपया यहाँ ही छोड़ करके जाएंगे तो क्या होगा, जब तक कमजोरी होगी ना, आप देखिए यही शब्द है ना, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऐसे और भी कईयों के साथ एज शब्द लिखा हुआ है। एक है लीकेज, उसमें भी एज है, और दूसरा है लिंकेज। आप हम सब बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत, वो टंकी होती है उसमें पानी बहुत डालते हैं, परंतु उसमें नीचे में सुराग होता है, पानी चला जाता है तो क्या होता है, टंकी भरती ही नहीं है लीकेज के कारण और लिंकेज के कारण। तो इस प्रकार से गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले जो है ना, इन दोनों की, ये दो बातों की एजिस बहुत है, हो गया है आयरन एज, लीकेज और लिंकेज, किसी कहा ना किसी का जुटाव हो जाता है। वास्तव में युगल, आप सब युगल कहते हो ना, युगल का अर्थ ये है कि जिसका कलयुग रूपी युग जो है ना वो गल गया है, वो है युगल। कलयुग रूपी जो युग जो है वो उसका गल गया है, चला गया है, तब उसको कहेंगे वास्तव में दैवी परिवार के जो है ना, हंसों की जोड़ी के रूप में, आदि आदि के रूप में जो गाया हुआ है गायन, तब हो सकता है ना। तो इसलिए ये जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना, तो हमारा किधर न किधर कोई न कोई प्रकार का लीकेजेस है, मतलब कोई न कोई प्रकार के सुराग है। इसके कारण क्या होता है, प्राप्त हुई शक्तियां जो भी है, मदद जो भी है, बल जो भी है ना, वो चला जाता है, कहाँ ना कहाँ कैसे चला जाता है मालूम नहीं। और जैसे दूसरा भी होता है, एक जो होती है ना नाव जो होती है, उसका लंगर जो लगा हुआ है, किधर भी बांधा हुआ होगा तो क्या होगा, कितना भी इंजन फास्ट चले, कितनी भी हवा आए, कुछ भी आए, तो भी वो वहां से नाव आगे नहीं जाती है। तो इस प्रकार से अपने आप को चेक कीजिए कि हम हर वर्ष अपने पुरुषार्थ के आधार पर कितने आगे बढ़े, कितने परसेंटेज में आगे बढ़े, हमारी जो कमजोरियां हैं उसको हमने कहां तक, कितने तक जीत पाए। एक ये कमजोरी है हमारी, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं ना, तो क्या होता है, घरों में रहते हैं और उसमें जो पुरुष प्रधान संस्कृति में रहते हैं ना, तो अपनी इच्छा, ये मेरी इच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए, जिसको कहते हैं मालिकपन का भाव। बाबा ने भी कहा बच्चे ठीक है ट्रस्टी तो है, तो साथ साथ बालकपने का और मालिकपने का, दोनों भाव का बैलेंस बराबर अपने जीवन में होना चाहिए। तो हमने देखा हुआ है, हमारे पास कई पत्र आते हैं, कई बहन भाई मिलते हैं, इन सब के बातों के आधार पर यही हमने देखा गया है कि बालकपन का भाव में कम रहते हैं और मालिकपन के भाव में ज्यादा रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा ऐसा आता है। एक बार मालूम है एक भाई ने पत्र भी लिखा था, पहले वो वहां के सेंटर के भंडारे में पैसा बाबा की भंडारी में रखता होगा, उसके बदले में यहाँ भेज दिया, कहा नहीं मैं जो कहता हूँ ना ऐसी बहन जी करती नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है वहां देने के लिए, मैं यज्ञ में भेज दूं। इस प्रकार से मतलब हम कहे उसी प्रकार से ही ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। इस प्रकार का मालिकपने का भाव जब आ जाता है तब क्या होता है, एक अहम आ जाता है, और उस अहम के कारण क्या होता है, अनेक प्रकार की, एक बार माया प्रवेश हो जाती है ना, उसके बाद अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं। हमारे पास बॉम्बे में एक भाई ने क्या किया, जगदीश भाई ने संस्था का परिचय का हिंदी में किताब लिखा था, उसका गुजराती कर दिया, उसने अनुवाद कर दिया, भाषांतर कर दिया, और उसके बाद उसने हमको दिया कि रमेश भाई इसको छपवा दो। मैंने कहा कितनी, कहा 2000। मैंने कहा बराबर है, आपके कहने पर मैं कैसे छपवाऊंगा, मैं मधुबन में ब्रह्मा बाबा से पूछता हूँ। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा और ट्रांसलेशन भी भेज दिया, मैंने कहा कि अपने क्लास के फलाने फलाने भाई ने ये किताब जो है बाबा जगदीश भाई की लिखी हुई संस्था का परिचय की थी, उस जमाने में पीले रंग की थी, पीला रंग का उसका कवर भी था, उस संस्था का परिचय जो है उसका गुजराती अनुवाद किया है, मैं उसको प्रिंट करूं। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, उसको लिखा हमको कि उसको गुजराती में अनुवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कोई विशेष काम के लिए छपवाई है, इसलिए विशेष सेवा हो जाएंगी, तो इस प्रकार के संस्था के परिचय की जरूरत नहीं है। तो मैंने तो बाबा का वो पत्र उस भाई को दे दिया। तो मैंने आपको कहा ना बालक बनना डिफिकल्ट है, परंतु मालिक बनना क्या होता है, हंसना नहीं। या तो मैं हमेशा कहता हूँ पगड़ी जो है ना अपने सिर पर फिट होती है तो भी नहीं पहनना। तो इसलिए उसने वो भाई को जब बोल दिया तो उसका बस मगज जो है ना जो है मगज जो थोड़ा गर्म हो गया। और आप जानते हैं एक बार माया आ जाती है इसके प्रकार, उसके बाद बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग भी कहीं ऐसे बोलते हैं जब हमारे में भी माया आ जाती है, यही यहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है, यहाँ गरीबों की सुनी नहीं जाती है, यहाँ ऐसा है वैसा है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की कई जगह पर सेंटरों पर हमने देखा हुआ है, रूठते हैं ना, जब रूठते हैं इस प्रकार का कई महारथी है ना जो बाबा से भी रूठ सकते हैं, तो इस प्रकार से उसने रूठने की भाषा आदि आदि बहुत कुछ कहा। तो हमने बाबा को उसकी सारी बातें जो है वो लिख करके भेज दी, बाबा ये भाई इतना बिगड़ा हुआ है, इतना ऐसे ऐसे बोला। तो बाबा ने बहुत सुंदर पत्र लिख दिया, बहुत सुंदर पत्र लिखा कि बच्चे अपनी हैसियत मत भूलिए, आप कौन हो, बाबा के आगे आपकी क्या विसात है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या पोजीशन है। बाबा ने आपकी राय मांगी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा आपकी राय पर चलने के लिए बंधायमान है। आपने मालिक बनकर के अपना पुरुषार्थ किया, किताब लिखी, उसका बाबा के भंडारे में जमा हो गया पुरुषार्थ। बाकी उसके आधार पर उस किताब को छपवाना नहीं छपवाना, यह बात का निर्णय करने की अथॉरिटी बाप के पास है। क्योंकि यह विश्वविद्यालय बाबा ने कहा कि मेरी श्रीमत पर चलने वाला है, आप बच्चों की मनमत के ऊपर नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अपनी हैसियत कभी मत भूलिए, आप बच्चे हो, आप रचना हो, मैं रचयिता हूँ। बाबा मुरलिया भी कहते हैं ना कि आप रचयिता हो, पुरुष ने भी स्त्री को रचा, फिर बच्चे रचे, इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो मास्टर रचयिता बने का जो अनुभव जो है ना, वो घड़ी घड़ी बीच में आता है, घड़ी घड़ी बीच में आता है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। और उसके कारण क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा में ज्यादा संघर्ष इसी बात का होता है, इसी बात का होता है कि हमारी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती। आप जितने भी बहन भाई छूटे छोड़ के गए हैं ना, यज्ञ छोड़ करके गए हुए, अभी इस टाइम पर दादी जी ने पत्र लिखा है ना 18 जनवरी इनको बुलाना, ऐसे जो गए हुए हैं ना, इन्हों से आप पूछेंगे ना तो 90% इसी बात से ही बताएंगे, क्या करें हमने ऐसी राय दी पर ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इस प्रकार से ही होता है। तो इसलिए बालक और मालिक का जो है ना, मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूँ बाबा की उस पत्र के आधार के, बच्चे राय बन राय देने के समय पर मालिक बनिए, पर तो मेरी राय होनी ही चाहिए, चलनी ही चाहिए, इस प्रकार का मालिक बने के आधार पर जिद करने का संस्कार नहीं होना चाहिए। राय देने के बाद फौरन क्या होना चाहिए, मालक से बालक बनना चाहिए। परंतु क्या होता है, वो जो है ना बचपन की कहानी सुनी हुई होंगी कि एक सन्यासी था, उसने क्या किया, एक उसके चूहा जो है ना उसके बाहर आता था, इसलिए चूहे को डराने के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली बनाई, बिल्ली बिल्ली को फिर उसका कुत्ता बनाया, कुत्ते को फिर शेर बनाया, और शेर बनाया ना तो फिर क्या किया, वही सन्यासी को ही खाने के लिए उसने मेहनत की, तो सन्यासी ने उसको फौरन चूहा बना दिया। कई बार ऐसा होता है, हम बाबा के सामने इस प्रकार के बाबा का ही ज्ञान इस प्रकार से बाबा को ही सुनाते हैं, और उसके परिणाम रूप क्या होता है, हमारी हैसियत को भूल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूँ, और मैं अपने और सब बहन भाइयों को हमेशा ही कहता हूँ अपनी हैसियत को मत भूलिए, हम क्या है, क्या थे, और किस बात के लिए यहाँ आए हुए संपूर्ण बनने के लिए ना, इसके अंदर रास्ते के अंदर ये क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम एक नदी के माफिक जो है ना, बाबा कहते हैं ना ज्ञान गंगाए हैं, तो उसका लक्ष्य क्या है, नदी का लक्ष्य है समुद्र में जाकर के समुद्र के साथ मिल जाना, वो उसका लक्ष्य है। उसका लक्ष्य ये नहीं है कि उसके दोनों कंठों के ऊपर जो किनारा जो है उसके ऊपर जो भी पानी पीने वाले जो भी पशु पंखी आदि जो भी रहते होंगे, शहर आदि जो भी होंगे, उनको पानी देना, वो उसका लक्ष्य नहीं है, वो उसका सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है समुद्र से मिलने का। इसी प्रकार से हमारा मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर संपूर्ण बनने का। इस संपूर्ण बनने के रास्ते में सेवा आदि जो भी है वो हम करते हैं, परंतु मेन पुरुषार्थ किस बात का है, कई बार ये हम भूल जाते हैं, साधन को साध्य और साध्य को साधन बना देते हैं। और इसलिए क्या होता है, वास्तव में घोड़ा आगे होना चाहिए, गाड़ी पीछे होनी चाहिए। रफ्तार इसलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि गाड़ी को आगे रख देते और घोड़े को पीछे रखते। इसी प्रकार से बाबा ने कहा हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहन भाइयों के लिए कि बच्चे आप सबकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए, निवृत्तिमय प्रवृत्ति और प्रवृत्तिमय निवृत्ति, यह एक सिद्धांत है बाबा का, निवृत्तिमय प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति। परंतु क्या हो गया है, हम लोगों का अभी तक पुरानी दुनिया के इन सब बातों के आधार प्रवृत्ति में ही प्रवृत्ति रही है, प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति, डिटेच और अटैच जो होता है ना, तो इस प्रकार से लगाव जो है ना हमारा, जो प्रवृत्ति के अंदर रहते हुए अंदर से दिल का लगाव निवृत्ति का होना चाहिए। जितनी भी प्रवृत्ति करो आप, कुछ नहीं कोई भी करो, धंधा करो आदि जो भी करो, बाबा ने लोभ की डेफिनेशन दिया हुआ है कि जरूरत से ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखना वो भी लोभ है। सरेंडर की डेफिनेशन में भी कहा हुआ है कि जरूरत से ज्यादा धन जो है ना अपना रखना वो भी इस प्रकार का लोभ है। इस प्रकार से प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति, अंदर से निवृत्ति अटैचमेंट बिल्कुल नहीं हो, परंतु एक ड्यूटी मिली हुई है ट्रस्टी के रूप में, उस प्रकार से करना चाहिए। उस प्रकार से नहीं करते उसके बदले में क्या करते हैं मालूम है, धंधा आदि जो भी है ना, बिजनेस आदि जो भी है उसके अंदर क्या करते हैं, संसार की घटमालाएं जो भी है उसके अंदर क्या करते हैं, सास बन गई होती है घर में, बहू आ गई है तो भी क्या करती है, सास समझती है कि मेरा घर में मैं सास पने का हुक्म नहीं चलाऊंगी तो बहू नहीं मानेंगी तो मेरी घर में पोजीशन क्या होगी, और उसके कारण क्या होता है, अंत तक वो अपने सास पने के उस प्रकार के कार्य से निवृत्ति ही नहीं रहती है, और जब तक उस सास पने के अनुभव उसमें से निवृत्ति नहीं लेती है तब तक ईश्वरीय सेवा में जितनी होनी चाहिए इतनी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से सब जगह पर है, अपने अंदर से त्याग जो है ना, त्याग हम कहते तो है परंतु दिल का जो त्याग होना चाहिए ना वो नहीं होता है, और उसके परिणाम रूप क्या होता है, वो सूक्ष्म जो है ना, वो सूक्ष्म लगाव जो है, सूक्ष्म जो है ना निवृत्ति नहीं हुई है, प्रवृत्ति ही में ही रहते हैं, एक धंधा छोड़कर के दूसरा तीसरा आदि जो भी करते हैं उस प्रकार का करते ही रहते हैं, और उसके परिणाम रूप क्या होता है, हम सुबह उठते तो हैं और उस टाइम पर योग लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु क्या होता है, हमने मम्मा को ये प्रश्न पूछा था, मम्मा ने कहा कि सुबह का योग उसका ही पावरफुल होगा जिसका सारा ही दिन निवृत्तिमय प्रवृत्ति वाला होगा, तो सारा ही दिन प्रवृत्ति में पूरा ही तन मन धन पूरा ही 100% लगा करके उस टाइम पर प्रवृत्ति में, और फिर सुबह एक घंटे तक बैठने के समय पर निवृत्ति में रहने का प्रयत्न करेंगे ने, तो प्रवृत्ति का वायुमंडल, प्रवृत्ति के संस्कार आदि जो भी हो ना खींचते ही रहेंगे, और उसके परिणाम रूप योग के गहन अनुभव नहीं हो सकते। आज भी हमारी मीटिंग में यही बात चली कि तपस्या वर्ष के अंदर योग की क्वांटिटी तो बढ़ाए साथ साथ हमारी योग की क्वालिटी भी बढ़नी ही चाहिए। आज योग के जो गहन अनुभव जो है, बिंदु रूप की अवस्था है योग के अंदर, अंतर्वाहक शरीर के आधार पर उसके अनुभव जो है, फरिश्ता रूप के अनुभव जो है, इस प्रकार के एक एक अनुभव जो गहन स्थिति के अनुभव जो है, जिन गहन स्थितियों के अनुभव के आधार पर ही हमारी उड़ती कला हो सकती है, वह गहन गति के अनुभव, वो गहरे अनुभव जो है ना, उसको पाना हो तो जब तक जीवन के अंदर अपने मन में, बुद्धि में और अपने व्यवहार में निवृत्ति नहीं लाई हुई है, सतत यर है। जैसे बाबा ने आज नहीं कहा कि मैं सोचता तो हूँ कि स्नान करने के टाइम पर भी बाबा को याद करूं, खाने के टाइम पर भी याद करूं, इस प्रकार के हम भी चाहते हैं परंतु व्यवहार में रहते हैं, घर संसार में रहते हैं तो क्या होता है। एक बार मैंने अव्यक्त बाबा को कहा कि बाबा मैंने एक गाड़ी कार बुक कराई है कलकत्ता, और कलकत्ते से मैं सभी सेंटरों पर घूमता घूमता 1.5-2 मास के बाद बॉम्बे आने वाला हूँ, तो रास्ते में सभी सेंटर्स वाले मिलने वाले हैं, तो मैंने बाबा को कहा बाबा कोई आप ऐसा संदेश दो कि मैं वो संदेश जो है ना सभी सेंटरों पर जाकर के सभी बहन भाइयों को वो संदेश दूं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तो, क्योंकि हम लोग परिवार से ही जा रहे, तो बाबा ने कहा तुम तो है ही प्रवृत्ति में रहने वाले, तो मेरे सभी गृहस्थी बच्चे जो वहां पर मिलेंगे ने, इन सबको खाली एक ही प्रश्न पूछ के आना कि जिस प्रकार की आदर्श गृहस्थ जीवन जीने के लिए बाबा ने कहा गृहस्थी जीवन जीविए, जीवन व्यतीत कीजिए, परंतु उसमें आदर्श गृहस्थ जीवन कहा है, सामान्य गृहस्थ जीवन नहीं कहा हुआ है। तो आदर्श गृहस्थ जीवन दिनचर्या जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार की करते हो? अभी नहीं करेंगे तो पूछना कब करेंगे। मैंने कहा बाबा उसका अर्थ क्या है आदर्श गृहस्थ व्यवहार? बाबा ने कहा कि मैंने कहा हुआ है समय का विभाजन 24 घंटे में 8 घंटा लौकिक व्यवहार, 8 घंटा शारीरिक नींद खाना पीना उसके लिए, और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा या तो ईश्वरीय कमाई आदि के प्रति होना चाहिए। यह आदर्श ग्रस्त व्यवहार की बाबा ने समय की विभाजन की सूचना दी हुई है। तो बाबा ने कहा कि मेरे ग्रस्त में रहने वाले बच्चों को जाकर के पूछना कि इस प्रकार से 8-8-8 जिस प्रकार का 3-8 प्रकार का मतलब ग्रस्त जीवन के अंदर समय के विभाजन के आधार पर उस प्रकार की दिनचर्या रहती है। मैंने कहा बाबा वो तो सब यही कहेंगे क्या करें, आज की जीवन में महंगाई इतनी हो गई है, मैं वकील हूं ना तो आप सबका मैंने वकालत की। बाबा को कहा कि बाबा इतनी महंगाई हो गई है कि 8 घंटे के पुरुषार्थ के आधार पर एक जन्म की कमाई जो भी है, एक मास का जो खर्च जो है ना, वो भी नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए उसमें ज्यादा समय देते हैं तो जो ईश्वरीय सेवा या तो ईश्वरीय कमाई जो है उसमें समय कम देते हैं। तो बाबा ने हंसते हंसते पूछा, मेरे को कहा कि तुम झूठी वकालत करता है, एक जन्म की कमाई भी 8 घंटे के पुरुषार्थ से पूरी नहीं होती है तो 21 जन्मों की कमाई 3-4 घंटे देने से होगी? बच्चों को पूछना। ये बाबा का प्रश्न है। मैंने कहा कि सोचा कि चलो ये भी प्रश्न आपको बता दूं ताकि आप सबके जीवन तो होंगी व्यवहार इस प्रकार का होगा ही, और आदर्श गृहस्थ व्यवहार 8 वर्ष से कम ज्ञान में चलते हो तो अपने 8 वर्ष में ये 8-8 वर्ष की तो बात आ गई, 8 वर्ष के पुरुषार्थ के आधार पर ये 8-8 वर्ष के 8-8 घंटे के समय का विभाजन की कला के ऊपर तो आप सबने मास्टरी विजय प्राप्त कर लिया ही होगा, इसलिए मैं इस बारे में पूछता ही नहीं ना पूछू ना, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस वेयर इट इज फॉली टू बी वाइज। तो इस प्रकार से अपने आप से पूछिए कि हाजी एक दिन का तो हो गया है, एक दिन का खाने से कितने दिन तक वो भूख संतुष्ट। तो इस प्रकार से यह जो जीवन व्यवहार के अंदर की बातें जो है ना, सूक्ष्म पुरुषार्थ की बातें, बालक सो मालक, उस प्रकार से दूसरा जो है ना गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बच्चों को बाबा ने कहा हुआ है, एक टाइटल दिया हुआ है कि आप सब बच्चे यज्ञ पिता और यज्ञ माता हो, दिया है टाइटल, याद है? जीवन का व्यवहार सेंटर ऊपर जाते हो तो यहाँ का व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि परिवार में रहते हैं लौकिक पिता या लौकिक माता के रूप का तो जीवन व्यवहार आता है, परंतु यज्ञ पिता या यज्ञ माता के रूप का जो व्यवहार जो है उस व्यवहार और उस प्रकार की सच्ची आदर्श ग्रस्त व्यवहार की बातें उसके ऊपर संपूर्णता को प्राप्त किया है। 90% जो हमारे पास जो बातें आती है उसका कारण यही है कि हम लोग जो है ना सेंटरों के ऊपर यज्ञ पिता और यज्ञ माता के रूप में व्यवहार नहीं करते। क्या होता है माँ बाप क्या होते हैं? मैं ऐसा मानता हूं लौकिक दुनिया के अंदर माँ बाप जो है ना अपने बच्चों के क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, माना कि अपने बच्चों की हर प्रकार की आशाएं अभिलाषाएं इच्छाएं जो उसको संतुष्ट करते हैं अपने बच्चों की। मैंने देखा हुआ है एक बार एक माता जो है ना वो बैठी हुई थी तो उसके बाजू में उसका बच्चा थोड़ा नाराज था तो उसका बच्चा जो है ना उसको पांव में से जोर जोर से मार रहा था लगा रहा था, तो मैंने माता को कहा आप थोड़े बाजू में बैठ जाओ आपका बच्चा आपको इतना लात लगा रहा है, तो उसने कहा नहीं रमेश भाई वो लात नहीं लगा रहा है, तो मैंने कहा क्या कर रहा है, कहा वो साइकिल चला रहा है। मुझे तो वहां साइकिल देखने में नहीं आई, परंतु वो माता थी ना इसलिए अपने बच्चों की कमजोरी को भी सहन कर लिया। हमारे में सहन शक्ति कम रहती है, हमारे पास पत्र आते हैं, कई बातें लेन देन होती है ना, इन सब बातों का सार इसका यही है कि यज्ञ पिता और यज्ञ माता के रूप में आप स्नेह दीजिए क्लास में आने वाले बहन भाइयों के साथ, वहां की बहनों के साथ, इन सब के साथ उस प्रकार का व्यवहार कीजिए। आप जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे ना उस प्रकार का रिटर्न में होगा। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं। एक बार दादी जी ने मुझे विदेश में भेजा तो मैंने नक्की किया कि उस टाइम पे जाता हूं तो वहां की जो बहनें जो है, भाई जो है, उसके साथ मैं किस प्रकार का व्यवहार करूं। बाबा ने तो हमेशा कहा हुआ है ना कि बच्चे भाई भाई की दृष्टि रखो, पर तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं, मैं भी एक प्रकार की दैवी गृहस्थी के आधार पर मैं भी मास्टर यज्ञ पिता के रूप में वहां जहां भी जाऊं वहां के बहन भाइयों के साथ जैसे कि एक यज्ञ पिता के रूप में उस प्रकार का व्यवहार करूं। तो मैंने जहां जाकर के सबको उसी रूप से, उसी भावना के आधार पर, उसी दृष्टि के आधार पर, उसी प्रकार से व्यवहार करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसका रिजल्ट जो है ना, स्नेह जो है ना, उस प्रकार से ही मिलता गया। और उसमें क्या हो गया, एक ठिकाने एक सेंटर पर मेरा जो प्रोग्राम जो था आगे जाने का कुछ चेंज हो रहा था तो मैंने वहां की जो सेंटर इंचार्ज बहन थी ना उसको मैंने कहा कि बहन जी ये मेरे जो टिकट जो है वो जरा टिकट का प्रोग्राम जो वहां तो सब फोन पर हो सकता है, हिंदुस्तान में तो वहां जाओ लाइन लगा करके खड़े रहो इस प्रकार का होता है, वहां तो सब फोन पर हो जाता है और वहां की अमेरिकन अंग्रेजी जो है थोड़ी समझने में डिफिकल्ट होती है यार, हमारी इंडियन अंग्रेजी जो है वो इतना वो लोग जल्दी नहीं समझते हैं। तो वहां की एक अमेरिकन बहन जो थी सेंटर इंचार्ज थी उसको मैंने कहा कि आप ये मेरे तरफ से उनके साथ बात कीजिए। इन्होंने उसके साथ बात कर लिया, उसके बाद वो सामने वाले टेलीफोन जो एयरलाइन कंपनी वाली ने पूछा उस बहन को कि ये जो जिसके बारे में आप चेंज करा रहे हो आपका क्या लगता है। तो वहां तो वो स्पीकर फोन होता है तो इसलिए सुनने में आता है वो क्या पूछ रही है, तो उसने पूछा कि ये आपका क्या लगता है। तो मुझे लगा कि अभी देखे ये बहन की परीक्षा है और मेरे जो मैंने जो उस प्रकार से जिस प्रकार का बीज व्यवहार उनके साथ किया हुआ उसका रिजल्ट क्या होता है मैं भी तो देखूं। तो उसने कह भी दिया, बहुत फ्रेंकली कहा कि ये मेरा पिता लगता है, ही इज माई फादर, ऐसा उसने कह दिया। तो मुझे लगा कि ये जो उसने जो कहा कारण ये है कि मैंने उसी प्रकार के संकल्प विकल्प जो भी कहो, व्यवहार कहो, आचार कहो, जो भी कहो, वो उस प्रकार की मेरी वृत्ति रखी, मैं स्नेह दूंगा तो सामने वाला जरूर मुझे स्नेह देगा। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, मैं हूं। मैं अगर मेरा परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ सबके व्यवहार का, व्यवहार के अंदर परिवर्तन होगा। हम क्या करते हैं, सामने वाला बदले तो मैं बदलू, 95% लोग यही चाहते हैं, सामने वाला बदले तो मैं बदलू। और अगर हम ये मास्टर यज्ञ पिता या मास्टर यज्ञ माता का रूप ले ले और उस प्रकार का व्यवहार करें तो क्या हो जाएगा, संघर्ष रहेगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के अवगुण या कमजोरी, कमी पेशी आदि जो भी है उसका ढंडेरा पीटेगा कि मेरे बच्चे में ये अवगुण है, मेरे बच्चे में ये अवगुण है, क्या करेगा, ढंडेरा होगा उसका। हाँ जी, समान है कि तो समान है कि शक्ति क्यों नहीं आती है, हम आउटस्पोकन के रूप में बोल देते हैं। कारण यही है कि हम यज्ञ पिता या यज्ञ माता के रूप में जो समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति आदि आदि योग में हम प्राप्त तो करते हैं परंतु उसको यूज नहीं करते। ये बाबा की कंप्लेंट है कि बच्चों के पास शक्ति तो मैं देता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनते हैं परंतु समय पर शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए समाने की शक्ति आदि के बदले में क्या होता है, जहां समाने की शक्ति यूज करना होता है ना उसके बदले में सामना करने की करते हैं, और माया के सामने सामना करने की शक्ति का उपयोग करना होता है वहां पर क्या करते हैं, सहयोग की शक्ति का उपयोग करते हैं। इसलिए जो माया से सहयोग करेगा उसका क्या रिजल्ट होगा सोच लीजिए। तो इस प्रकार से वास्तविकता जो है ना पुरुषार्थ की, इन पुरुषार्थ की वास्तविकता के ऊपर जाना चाहिए। तीसरी बात, क्योंकि समय हो रहा है इसलिए एक दो और बात मुझे कहनी थी कि एक ये बात है, हमारे पास बाबा जो है ना अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है आगे बढ़ने की, चाहे समर्पित है, चाहे ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार है, कोई भी है, इन सबको बाबा आगे बढ़ने की बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। क्योंकि बाबा के ज्ञान में जो सोशलिज्म हो, बाबा, हमने साम्यवाद, समाजवाद, बाबा का समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीपतिवाद, इस प्रकार की इन सब बातों के ऊपर ज्ञानामृत में पहले बहुत आर्टिकल्स लिखे हुए थे। तो बाबा का समाजवाद जो है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले छोटा बड़ा जो भी है, बाबा सबको समान तक देता है आगे बढ़ने की। परंतु क्या करते हैं हम, जो ज्ञान है ना, हमारे गुजराती में क्या है, लक्ष्मी तिलक करने को आती है तो कई लोग जो है ना मुख धोने को जाते हैं। आई हुई जो अपॉर्चुनिटीज जो तक जो है आगे बढ़ने के लिए आपके सामने बातें आती है, तक देते, चांस देते हैं। बाबा ने तो कहा, हम जानते भी है, चांस लेकर के चांसलर बनो। परंतु हम क्या करते हैं, हम कैसे कर सकेंगे, ये हो सकेगा या नहीं, नहीं होगा, क्या होगा, इस प्रकार क्या, क्यों, क्यों आदि के इसके पुरुषार्थ में ही लग जाते हैं। मैं आपको अपना ही खुद का अनुभव बताऊं कि मम्मा को हमारे पास बॉम्बे में फोन आया कानपुर से कि मम्मा को यहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया गया है कल, और डॉक्टरों ने कहा हुआ है कि शायद ये कैंसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी उनको बॉम्बे ले जाइए। तो हमने कहा कि उनको यहाँ पर भेज दो मम्मा को। उसी टाइम पर कानपुर के बहन भाइयों को कहा, नहीं, हम बाबा से राय करते हैं, हमने भी बाबा को कॉल बुक किया हुआ है, आप भी करिए, बाबा क्या आशीर्वाद देते हैं उसके आधार पर मम्मा का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने भी बॉम्बे से अर्जेंट कॉल बुक किया बाबा को, और हमारा लगे उसके पहले जो है ना, एक दो घंटे पहले बाबा का कानपुर के साथ मतलब कॉल लग गया, तो बाबा को मालूम पड़ गया। तो बाबा को मालूम पड़ गया तो मतलब बाद में हमारा फोन गया, तो हमने बाबा को कहा कि बाबा आपने क्या डायरेक्शन दिया है। बाबा ने कहा कि कानपुर से बच्ची जो है, मेरा मम्मा जो है ना, वो मधुबन आए और उसके बाद बॉम्बे जाए। तो हमने ऑफर किया, मैंने कहा चांस मिलता है तो चांस ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा वहां डायरेक्ट क्यों बॉम्बे क्यों नहीं आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहाँ रहेंगे। मैंने कहा बाबा हमारा घर है ना, हमारे घर में पहले भी मम्मा 8 मास रही हुई, अभी भी दोबारा 8 मास रहे। कहा नहीं, तुम्हारा घर छोटा है, तुमको बहुत तकलीफ होंगी, आदि आदि अनेक प्रकार की बातें। तो मुझे विश्व किशोर दादा ने कहा था कि बाबा की दो प्रकार की श्रीमत होती है, एक श्रीमत आगे बढ़ने के लिए भी होती है और दूसरी श्रीमत परीक्षा लेने के लिए भी होती है। हम श्रीमत कई बार परीक्षा लेने की श्रीमत को आगे बढ़ने की और आगे बढ़ने की श्रीमत को परीक्षा की श्रीमत ले लेते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे ये मालूम था कि बाबा ये जो पूछ रहे कि तेरा घर छोटा है, तुम बच्चों को बहुत तकलीफ होंगी आदि आदि, बाबा मेरी परीक्षा ले रहे। तो मैंने कहा बाबा नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या हो गया, घर में माँ आती है तो बच्चे जो है एडजस्ट कर लेते हैं घर में और उस प्रकार से हो जाएगा आदि आदि कहते हुए पीछे हमने कहा कि बाबा पेशेंट को तो सबसे ज्यादा में ज्यादा डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और हमारे घर में तो 24 घंटा डॉक्टर होगा, हमारी बड़ी बहन लौकिक जो है वो डॉक्टर है, तो इस प्रकार से उनको सब प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ ही भेजो। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चा ठीक है, तेरे पास आ जाएगी मम्मा। और उस प्रकार से मम्मा हमारे पास आई। क्यों आई, कैसे आई, हमने ऑफर किया तो, नहीं करता तो क्या होता। कहने का भाव क्या है, इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ने की अनेक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज देता है आगे बढ़ने के लिए। हम सोचते हैं, सोचने में क्या होता है, सोचते ही उसके ही अंदर जो है ना हमारा समय जो है ना इस प्रकार से चला जाता है। तो इस प्रकार से सेवा के फील्ड में, पुरुषार्थ के फील्ड में आदि में आगे बढ़ने के लिए बाबा बहुत कुछ लिफ्ट देने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु क्या होता है, हम बच्चे जो है ना देते नहीं है और इसके पर लेते नहीं है, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार नहीं करते, चैलेंजेस को उस प्रकार से मतलब चांस को चैलेंज के रूप में लेकर के चांसलर बनने की बात तो होती है, तो बहुत सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं, इसलिए क्या होता है, वास्तव में बाबा को सोचना चाहिए, उसके बदले में क्या करते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं, और इसलिए क्या होता है कि बाबा को सोचने का मार्जिन ही नहीं देते। तो इसलिए क्या होता है, बाबा की मदद क्या है, ईश्वरीय मदद क्या है, जो है ना सरेंडर्ड बुद्धि के अंदर भी ये बात आती है, आप बुद्धि को सरेंडर्ड कर दो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर वो दिव्य बुद्धि दादा जो है वो अपनी प्रेरणा के द्वारा आपको मदद दे सकता है और आप उसकी अनुभूति कर सकते हो। कि ये मदद जो है, ये शक्ति जो है, ये विचार जो है, यह बल जो है ना, मेरी बुद्धि का, मेरे संस्कार या मेरे आत्मा के वश की बात नहीं है। ये कोई श्रीमत है, श्रीमत के आधार पर बाबा की शक्ति, बाबा की मदद है। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, मुझे दादी जी ने भेजा हांगकांग, हांगकांग में अपने विश्वविद्यालय को रजिस्टर्ड करने के लिए भेजा। तो वहां पर गया तो मैंने सोचा कि मैं तो वहां के कानून को जानता नहीं हूँ, थोड़े भारत के कानून को जानता हूँ, वहां के कानून को जाकर के मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने समझा कि बाबा ने जो मुझे भेजा हुआ है और ऑफर किया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं गया, वहां गया तो सुबह 9 बजे करीब मैं हांगकांग पहुंचा और वहां के बड़े सॉलिसिटर के पास अपना जो भी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए जो निमित्त एक सॉलिसिटर था उनके पास गए। शाम को 4:30 बजे का टाइम था, 4:30 बजे जब हम पहुंचे तो उसने जो ड्राफ्ट बनाया था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आदि, वो उसने हमको दिया और कहा कि इसके बारे में आपके कोई विचार हो तो बताइए। हमने कहा भाई हम तो आज ही आए हैं और आपका ये पढ़ा नहीं है, हमको पढ़ने का मार्जिन दो, उसमें कोई गलतियां हो सकती है तो मैं कल सुबह बताऊंगा। तो मैंने जो शब्द बोला ना, उसमें कोई गलतियां हो सकती है तो मैं, इसलिए मुझे टाइम दो। तो उसको लगा कि ये क्या, मेरे उसमें गलतियां कैसे निकाल सकता है। फिर भी चाइनीज था, उसने कहा कि ठीक है कल सुबह, टुमारो एट 9:30, क्योंकि 9:30 के बाद में, 10 बजे के बाद में बिजी हूँ, 9:30 से 10 के बीच में आप आइए। उसने समझा कि ये भारत से आया हुआ, उसको हमारे देश के कानून का क्या ज्ञान होगा। और हम तो वापस आ गए, रात को क्लास में मिले, सबसे सुबह में मिले और उसके बाद 8 बजे क्लास समाप्त हुआ, तो 8 से 9 हमको पढ़ने का टाइम मिला। तो हमने बाबा को, मैंने कहा ना आपको चांस ले लेते हैं और बाबा को बुद्धि सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है, बाबा की मदद मिलती है। तो जब हमने वो पढ़ना शुरू किया, हमने बाबा को कहा बाबा मैं यहाँ के कानून तो जानता ही नहीं हूँ, ये मेरी बुद्धि जो है ना, उस बुद्धि को दिव्य बनाने का और उसके आधार पर इन कानून, इन्होंने जो बनाए हुए उसमें जो भी गलतियां हैं उसको ढूंढने का काम या तो बताने का काम आपको करना होगा, नहीं तो उसमें अगर गलतियां रह जाएंगी तो काम किसका बिगड़ेगा, बाबा आपका काम बिगड़ेगा। तो इसलिए तो बाबा ने, मैंने देखा, मैं खुद आपको बताओ अनुभव कर सकता, कह सकता हूँ कि इस प्रकार के बाबा टच करते गए और जहां जहां गलतियां थी ना वहां वहां ऑटोमेटिकली नजर जाती हो तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे में लाल पेंसिल मेरे पास थी, उसमें से लाल साइज से मतलब निशान लगाता गया। और आखिर में 1 घंटे के बाद हमने देखा तो उसमें 32 जगह पर निशान लगे हुए थे। और 9:30 बजे जब हम उनके पास, सॉलिस्टर के पास पहुंच गए तो उसने कहा आपने पढ़ा, हमने कहा हाँ पढ़ा। उसने कहा कुछ है उसमें करेक्शन, मैंने कहा थोड़ा है करेक्शन, क्योंकि सीधा ही कहेगे तो उसका तो अभिमान जो है, अहंकार बीच में आता है। तो एक के बाद एक जो है ना, मैं बताता गया मिस्टेक, बताता गया, पहले 2-4 मिस्टेक तो स्वीकार करने में उसका अहंकार बीच में आता गया। उसके बाद तो एक के बाद एक, जैसे जिज्ञासु का अनुभव होता होगा ना, पहले 7 दिन में, पहले 1-2 दिन लोग जरा संघर्ष करते हैं, उसके बाद 5वें 6वें दिन 7वें दिन तो जो हम कहते हैं उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। उस प्रकार से उसने कर लिया और 32 मिस्टेक हमने उसको दिखा दी। और उसके बाद उसने कहा कि ये 32 मिस्टेक जो है मैं उसको करेक्ट करके आप फिर दोबारा शाम को 4 बजे आइए। मैंने कहा ठीक है हम 4 बजे आते हैं। तो विदाई लेने के टाइम पर वहां हैंडशेक करते हैं तो भाई ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे कहा कि मिस्टर शाह प्लीज लेट मी नो वन थिंग, आज आपने मेरा अभिमान जो है उसका टुकड़े टुकड़ा कर दिया। मैंने कहा क्या, कहा मेरी फर्म जो है सॉलिसिटर्स की, ये हांगकांग के अंदर नंबर 1 सॉलिसिटर फर्म है और उसका मैं सीनियर मोस्ट पार्टनर हूँ। तो मुझे अभिमान था कि मेरे बनाए हुए ड्राफ्ट में मैंने जो लिखा है उसमें कोई गलती नहीं बता सकता है, और उसमें आप जो हमारे देश के कानूनों को नहीं जानते हो, मैं अपने देश के कानूनों का खां हूं, मतलब एक्सपर्ट हूं, अथॉरिटी हूं, और मेरे ड्राफ्ट में आपने 32 मिस्टेक्स बताई और मैं जानता हूं कि आप मेरे देश को नहीं जानते हो, कल आए हो 4:30 बजे लेके गए हो और मैंने आज सुबह 9:30 बजे आपको बुलाया और आपने इतने में मेरे ड्राफ्ट में 32 मिस्टेक्स, भूले, गलतियां निकाली, वो किस आधार पर निकाली। मैंने कहा मैंने नहीं निकाली है, ये तो ईश्वरीय बुद्धि जो है, ईश्वरीय शक्ति जो है, ईश्वरीय मदद जो है ना, इन मदद के आधार पर उसके बाद हमने 10-15 मिनट उसको ज्ञान दिया। और ये हमारा अनुभव है कि इस प्रकार से हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भी कुछ करते हैं ना उस टाइम पर चांस ले लेते हैं और अपने आप को फुल्ली सरेंडर्ड कर देते हैं ना, अपने मन को, अपने बुद्धि को आदि को, तो क्या होता है, वो बाबा की शक्ति, बाबा की मदद इस प्रकार से आती है। आप डिस्टिंक्टली देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये बाबा की मदद है। और उसकी गहरी अनुभूति जितनी जितनी दिन जीवन में होती जाएंगी ना, इतनी इतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएंगी। और इसलिए क्या करना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आपकी जो खूबी है उसको ईश्वरीय सेवा में लगाइए। सेवा के अंदर बाबा राजधानी स्थापन कर रहा है तो बाबा को सब प्रकार की जरूरत है, सब प्रकार की जरूरत है। देखिए यहाँ पर बहनें जल्दी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुरली में आता है कि रोटी बेलने के लिए माताएं चाहिए, तो माताएं जल्दी आ जाती है, तो सेवाधारी भाई कम आते हैं। कारण यही है कि अपनी खूबियों को ईश्वरीय सेवा में लगाने की युक्ति जो है ना, वो युक्ति नहीं आती है। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं, इस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर यह बाबा के ज्ञान के आधार पर दी हुई युक्तियां जो है ना, इस युक्तियों को जीवन में लाएंगे ना, तो इस युक्तियों के आधार पर मुक्ति और जीवन मुक्ति बहुत सहज हो सकता है। पुरुषार्थ कोई कठिन नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद पा सकते हैं, परंतु क्या है, जो युक्तियां बताई है ने बाबा ने, उस प्रकार से युक्ति युक्त पुरुषार्थ या व्यवहार नहीं होता है। अगर हम इस प्रकार से व्यवहार कर ले ना, तो पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ जो है ना, वो वास्तव में सहज है। युक्तियां हमने नहीं अपनाई हुई है, इसके परिणाम रूप हमने क्या कर दिया है, पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ को कठिन कर दिया है।
ओम शांति।